जो सही मायनों में भक्ति भरा जीवन जी रहा है वो मराठी है, गुजराती है, या असमिया है, या हरियाणवी है, या उत्तरांचल का है, उत्तर प्रदेश का है, अमेरिका में रहता है या कनाडा में रहता है, तो वो भाव तो प्रेम वाले भाव उसके होते हैं, क्योंकि भक्ति वाले पहलू को वो जीवन में विशेषता देता है, इस नाम के रंग में रंगा हुआ है। तो जो भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं वो चाहे किसी भी संस्कृति, किसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हों, औरत के रूप में है, मर्द के रूप में है, दुनिया के किसी हिस्से में रहने वाले हैं, तो वो प्रेम को ही विशेषता देंगे, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। और भक्ति में अगर प्रेम ही ना हो तो वो भक्ति क्या? भक्ति कोई पहरावे का नाम है नहीं, लिबास के किसी रंग विशेष का नाम तो है नहीं। कभी भी भक्ति की पहचान किसी युग में भी लिबासों से नहीं हुई है। बाल बढ़ा दिए हैं या बाल मुंडवा दिए हैं, कभी भी ये पैमाना नहीं रहा है। कोई माथे पे तिलक लगाया है या नहीं लगाया है, ये कोई भी पहचान कभी भी नहीं रही है, ये पैमाना है ही नहीं। अगर यही पैमाना हो तो फिर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो चिन्ह और वो साधन अपनाने वाले, और जिन्होंने वो चिन्ह नहीं अपनाए हुए, ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि एक तरफ वो सब पठन पाठन भी है, जप तप स्नान भी है, वो विशेष प्रकार के लिबास के रंग भी हैं, लेकिन वहाँ पर नफरत कूट कूट के भरी पड़ी है, अभिमान कूट कूट के भरा पड़ा है, जाति का अभिमान, अपनी कौम का अभिमान, अपनी विद्वता का अभिमान, अपनी संस्कृति का अभिमान। तो इस तरह से नाना प्रकार के कारण और उसके द्वारा अभिमान के रोग में ग्रस्त, और दूसरी तरफ जो वाक्य ही भक्ति सही मायनों में जिसने जानी है और वो प्रेम को विशेषता देता है, उसने भले ही वो विशेष प्रकार के वो रंग वाले वस्त्र नहीं पहने हुए, उसने कोई तिलक नहीं लगाया हुआ, वो कोई माला भी ना फेरता होगा, लेकिन प्रेम उसके जीवन में रचा हुआ और बहुत महत्ता देता उसको, तो फिर कसौटी क्या हुई? कसौटी जो संत महात्माओं ने युगों युगों से बताई कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, जो युगों युगों से बताया है कि एक तरफ शरा है और एक तरफ एक इश्क है, एक प्रेम है, इस प्रभु परमात्मा निराकार को इस तरह हृदय में बसाया हुआ है, इस सत्य को प्रधानता दी जाती है, इस निर्मल पावन सत्ता को विशेषता दी जाती है, इसको आधार बनाया जाता है, इसको जीवन में एक अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से महापुरुषों के कथन के दया धर्म का मूल है। दया अगर प्रेम नहीं है तो दया हो सकती है क्या? नहीं। नफरत है तो निर्दयता होगी, दया नहीं होगी। तो प्रेम अगर है तो फिर दया भी आ जाएगी, दया का भाव पैदा हो जाएगा। तो दया धर्म का मूल है। इस प्रकार से एक तरफ शरा है, एक तरफ ऐसा प्रेम का भाव है, ऐसा करुणा का भाव है, जैसे बुल्ले शाह जी, जैसे संतों ने और सूफी महात्माओं ने वचन कहे हैं कि इश्क शरा विच मंजिल पारी, सहा कोहां दे पाड़े हो, इश्क ना जिना खरीदिया बाहु, दोई जहानी माड़े हो। कि मियां बाहु हो या शाह हुसैन हो या फरीद जी हो या बुल्ले शाह जी हो, सब इस तरह से एक मत के सच और एक तरफ एक शरा। तो कहते हैं कि इश्क शरा विच मंजिल पारी, सहां कोहां दे पाड़े हो, यानी कि कोसों का फासला है, एक इश्क हकीकी और दूसरी तरफ शरा, यानी कि वही क्रियाएं और ऐसे जतन करने, एक केवल उन्हीं में युक्त है, उन्हीं में गलतान है और दूसरा प्रेम को, दया को, करुणा को विशेषता जीवन में देता है। तो इस प्रकार से जो बात दास कह रहा था कि चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला है, हिंदुस्तान के किसी प्रांत में, विश्व के किसी मुल्क में रहने वाला है, वो प्रेम को विशेषता देता है। ना वैर ना तकरार की ज़रूरत है किसकी, प्यार की, और प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, कि जब भी सजना सवरना है वो प्यार के कारण ही है। सजना सवरना कोई सुंदर लिबासों से नहीं है, कोई सुंदर आभूषणों से नहीं है, कोई आलीशान बहुत सुंदर एलिवेशन वाले मकान, बहुत सुंदर फेशिया है बिल्डिंगों का नहीं। सजना और सवरना, प्यार सजाता है गुलशन को, के सजना और सवरना भी प्यार के कारण ही है। लेकिन आज सवरना नहीं, आज बदसूरती नजर आती है संसार में, और इसलिए बदसूरती है क्योंकि प्यार की बजाय नफरत का बोलबाला है। हर कोई नफरत किए चले जा रहा है, मेरी जाति ये, तेरी जाति वो, जातियों की दीवारें और जातियों का आधार लेकर नफरतें और फिर हिंसा। इस प्रकार से नफरत ही नफरत नज़र आती है, कहीं मज़ो मिल्लत की दीवारें नफरत, शरीर का रंग भिन्न है नफरत, मैं गोरे रंग का तू काले रंग का, साउथ अफ्रीका में भी हम कब से हम देखते आए इतिहास में, और जिसके कारण महात्मा गांधी जी के साथ भी वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, और महात्मा गांधी जी के बाद भी कितना अरसा वो भेदभाव चलता रहा, काले और गोरा, कि जहाँ पर गोरे रोग लेते हैं वो एरिया मार्क्ड है कि उसमें कोई काला दाखिल ही नहीं हो सकता। तो इस तरह से कोई चमड़ी के रंग के आधार के ऊपर घृणा नफरत किए चले जा रहा है। इस प्रकार से देखते चले जाएं, एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, जब जो आधार, एक कारणों की लिस्ट जो आधार बनती है इस संसार के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, तो प्यार सजाता है गुलशन को। तो यहाँ पर प्यार की ही बात हो रही है, और किस गुरु पीर पैगंबर का पाठ प्यार से हट कर था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, भगवान राम, हज़रत ईसा मसीह जी, हज़रत मोहम्मद साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, या फिर कबीर जी या रविदास जी, मीरा बाई, या और अनेकों ऐसे महात्मा भक्तजन। तो इनमें से कोई भी किसी की वाणी में पंक्ति नहीं मिलती कि नफरत करो, जाति का नाम लेकर नफरत करो, संस्कृति का आधार बनाकर नफरत करो, प्रांतीयवाद का नारा बुलंद करके नफरत करो, मुल्कों को आधार बनाकर नफरत करो, औरत मर्द से नफरत करे या मर्द ना औरत से नफरत करे, एक कर्मचारी ऑफिसर से नफरत करे और ऑफिसर कर्मचारी को का शोषण करे, कहीं पर भी, किसी वाणी में भी, किसी महात्मा, किसी गुरु पीर पैगंबर की वाणी में नफरत के राह पे चलने की हरगिज प्रेरणा नहीं है। पाठी जब वो प्यार का पढ़ाते हैं तो प्रेरणा प्यार करने की ही देंगे, और प्यार से जीवन जिया हुआ ही उनके मुताबिक जीवन है। अगर प्यार करना नहीं आया, प्यार से जीना नहीं आया, तो वो जीवन जीवन भी नहीं कहलाता है, एक चलती फिरती लाशें की सांस ले रही हैं लेकिन लाश की संज्ञा दी गई, क्योंकि उसमें वो प्यार है नहीं, जीवित है क्योंकि नब्ज़ भी चल रही है, सांस भी चल रही है, इसलिए जीवित है बेशक, लेकिन प्यार नहीं है इसलिए उसको मृतक भी माना जाता है। इसीलिए कहा है कि मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत, कि उसको मृतक कहा जाता है जिसको भगवंत से प्रीत नहीं है। और भगवंत से प्रीत का मतलब ये नहीं कि इस भगवंत इस परमात्मा की जय जयकार बुलाएं तो हम इस भगवंत से प्रीत कर रहे हैं, हम विशेष प्रकार के लिबास पहनते हैं तो हम भगवंत से प्रीत कर रहे हैं, जैसे दास ने कहा कि ये भक्ति की कभी भी पहचान रही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस तरह से मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत, कि उसको मृतक कहा जाता है जिसको भगवंत से प्रीत नहीं। भगवंत से प्रीत नहीं का मतलब जो इस प्रभु के बंदों से प्यार करना नहीं जानता है। अगर प्रभु के बंदों से ही प्यार नहीं है तो प्रभु का काहे का वो प्रेमी है। प्रभु प्रेमी बनना तभी मुमकिन होता है जब वाकई ही जीवन में प्रेम को विशेषता देते हैं, प्रेम करते हैं इंसानों से, ये ना देखते हुए कि कोई काला है कि गोरा है, ये ना देखते हुए कि किस घराने में पैदा हुआ है, ये ना देखते हुए कि कोई राजा है या प्रजा का अंग है, कुछ भी ना देखते हुए केवल प्रेम, वो प्रेम की धारा बहाते चले जाते हैं, प्रेम की दौलत बांटते चले जाते हैं। तो यही पाठ प्रेम का ये तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने पढ़ाया, लेकिन विद्यार्थी भी होते हैं, आजकल भी एग्जाम्स चल ही रहे हैं तो हर विद्यार्थी को पाठ नहीं याद रहता है, अनेकों याद रखते हैं अनेकों को भूल जाता है। इसी प्रकार से जीवन में अनेकों शिक्षाएं दी जाती हैं लेकिन हर कोई उस शिक्षा को उतनी सीरियसनेस से नहीं लेता है, उसको अहमियत नहीं देता है, मानो कि उसने भुलाई दिया है वो पाठ, वो शिक्षा, वो एडवाइस जो दी गई है उसको भुलाई दिया गया है। इसी तरह से गुरु पीर पैगंबरों वाले प्यार के पाठ को भी उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों के प्रति श्रद्धा रखने वाले उसको ही भुला बैठते हैं और चुन लेते हैं नफरत का मार्ग और चल पड़ते हैं उस रास्ते पे नुकसान मातम फैलाते हुए, मासूमों पे जुल्म ढाते हुए और इस धरती को स्वर्ग बनाने के बजाय नरक बनाने में लगे रहते हैं। और आज भी यही दौर है, आज भी नफ़रतों के ही बोलबाले हैं। और एक आशा की किरण वो सज्जन और वो भक्त प्रवृत्ति वाले जो वाकई ही प्रेम को विशेषता देते हैं, जो धर्म के सच्चे मायने जानते हैं कि दया धर्म का मूल है, वही एक आशा की किरण, एक वही किरण इस घोर अंधकार में जो कि कुछ ढारस बंधाती है, जो कि एक इस तरह से आशावादी बनाती है कि सब कुछ नहीं खो गया है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं गया है अभी। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, ये पहले भी कहा गया है। तो एक आशा की किरण, एक अगर कुछ बचा हुआ है, अगर कुछ सवरने की संभावना भी है तो वो है ऐसी मान्यता और ऐसी प्रवृत्ति वाले सत्य का बोध करके इस उजाले से भरपूर होकर संतों महापुरुषों वाली मति को अपनाकर जीवन जीने वाले, वही है जो इस धरती का बचाव कर सकते हैं, वही है जो भटकों से को रास्ते पर ला सकते हैं, वही जले हुए दीपक हैं जो बुझे हुए दीपकों में भी रोशनी स्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार से सारे वातावरण में बेहतरी आ सकती है। और इसीलिए प्रेरित किया जाता है कि ऐसे मुहिम में, ऐसे अभियान में हर किसी ने योगदान देना है जो ऐसी मान्यता से युक्त है वही देगा, जो ऐसी भावना से युक्त है वही योगदान देगा, और विपरीत भावना वाले तो वो तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो हमारे सामने ही है। तो इसलिए संत महात्मा भक्तजन वो यही पैगाम दे रहे हैं कि एहसास करें कि वाकई ही गुरु पीर पैगंबरों ने कौन सी भावनाओं को विशेषता दी थी। अगर वाकई हम श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति तो फिर हमें इस बात से गुरेज क्यों है, फिर क्यों नहीं हम प्यार के मार्ग पर चलते हैं। अगर भगवान राम शबरी को गले लगाते हैं उसकी कोई जाति नहीं देखी जा रही है, और हम राम की जय बुलाने में तो थकते नहीं, लेकिन क्या हम भी स्वीकार करते हैं, हमारी भी क्या दृष्टि वही है? ऐसा पाया जाता है कि वाकई ही हमारी वो दृष्टि नहीं है, एक सम दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि भेदभाव वाली है, ऊंच नीच वाली है, ये हमारी दृष्टि है। तो इसलिए संत महात्मा यही जागृति लाते हैं, यही एक एहसास कराते हैं, यही बोध कराते हैं। कथा कहानियां तो सुनते सुनते युग बीत गए हैं, केवल कथा कहानियां सुन लेनी सुना लेनी, उन कथाओं की विशेषताएं हैं अपनी गुरु पीर पैगंबरों के जीवन के साथ, उनकी शिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी विशेषता है। लेकिन अक्सर यही होता है कि केवल वो हमारे लिए कई दफ़ा मनोरंजन बन जाता है या फिर कान रस बन जाता है, लेकिन जो तत्व है, जो मूल है, उसको नहीं पकड़ते हैं, उसको हम उस संजीदगी से नहीं लेते हैं। तो इसलिए महात्मा जन वही स्टीक और सीधी सीधी बात करते हैं, कोई ऐसी लाग लपेट करके नहीं, सीधी सी बात के इंसानों अनुकरण करो, मन अंतर अपने झांको कि तुम्हारी मान्यताएं क्या हैं, तुम्हारे भाव क्या हैं, और पूजा अर्चना कर रहे हो, स्थानों पे हाजिरी भरते हो, जब तप स्नान करते हो, लेकिन वही बात कि हाथ सुमरनी और बगल कुतरनी, एक ऐसी इंसानों की चाल कि हाथ में सुमरनी है, माला के मणके घूम रहे हैं, लेकिन बगल कुतरनी, बगल में कटार है। इसी तरह से संतों महात्माओं की वाणी कि जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेते ये जपनी क्या होए, वही कबीर जी की वाणी है जिनके वचन हम पढ़ते सुनते हैं। तो क्या केवल पढ़ना सुनना ही अभिप्राय था कबीर जी का, वो वाणी लिखने का, कि ऐसा समय आएगा कि मेरी वाणी पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, और लोग उसके ऊपर थीसिस लिखेंगे, पीएचडी करेंगे, या कोई वो सुंदर स्वर में गा लेगा, उसकी कैसेट्स बन जाएंगी, यह अभिप्राय था क्या उनका? नहीं, उनकी वाणी थी एक आईना, सच्चाई रूपी आईना सामने रख दिया कि इस आईने में देखो कि क्या कर क्या रहे हो, और किस तरह से संवारना है, किस तरह से अपने दागों को मिटाना है, किस तरह से एक सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मानवता की डगर पर चलना है, एक भक्ति के मायने जानने हैं, प्रेम के रास्ते पे चलना है, आत्मा का कल्याण करना है, आवागमन के बंधनों से आत्मा को भी निजात देनी है, एक मूल की पहचान करवा के आत्मा का भी रोशन होना, मन का भी रोशन होना, इन दोनों के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। और केवल कबीर जी ही क्या, तमाम संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर वो यही एक संदेश देते आए हैं। लेकिन वही सवरता है और वही लाभान्वित होता है, उसी की आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिलती है, वही मंजिले मकसूद को पाता है, वही एक सवरा हुआ जीवन जीता है जो वाकई ही उसी रास्ते पे चल पड़ता है, नाता जोड़ लेता है सत्य के साथ, संतों की मति को अपनी मति बना लेता है, वही सोच बना लेता है, वही भाव बना लेता है, उसी अनुसार व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से कर्ते की विद्या, जैसे अक्सर कहावतें मशहूर हैं कि ये तो कर्ते की विद्या है, ये तो प्रैक्टिस हो गई, ये तो वैसा आचरण हो गया हो, या ऐसा कर्म करने लग पड़ा है, तो वाकई ही इस प्रकार से एक कर्म करते हैं वो उसी भावना के तहत, तो वाकई ही वो अपने आप को भक्त होने का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार से आत्मा को परम तत्व का बोध हो गया तो आत्मा को भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो गई, आवागमन से निजात मिल गई। तो इसलिए संतों महात्माओं की वाणी आज भी यही थी कि हमने जहाँ पर इस संसार में इंसान के शरीर में आए हैं, ये मानुष तन हमें मिला है, तो इस जन्म को हमने पाया है, तो इस जन्म को पाया इंसान के रूप में, तो इसकी महत्ता दो संदर्भ में, एक तो आत्मा के कल्याण करने का अवसर मिला जब मालिक ने इस इंसानी योनि में जन्म दे दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, एक तो है आत्मा के कल्याण उस संदर्भ में इस जन्म को पाना भाग्य की बात मानी गई, और दूसरा उस संदर्भ में कि वाकई इंसान के रूप में पैदा हुए तो अन्य योनियों पशु जानवरों से बेहतर अपने आप को प्रमाणित करना है। एक तो इंसानी जन्म का महत्व के आत्मा के कल्याण करने का सुनहरी अवसर, और दूसरा इस संदर्भ में इस इंसानी जन्म को महत्ता के वाकई ही इसको जितनी सोचने समझने की ताकत दी गई है वो पशु पंछी जानवरों को नहीं, कुछ लेवल तक तो हैं, एक सर्टन लेवल तक तो पशु पंछी जानवरों में भी कुछ समझने की और कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करके वैसी हरकत करने की समझ दी गई है, अपना बचाव करने की समझ दी गई है, तो कुछ लेवल्स के ऊपर उन पशु पंछी जानवरों में भी वेरी करती है वो सूझबूझ वो समझ, लेकिन फिर भी उतनी नहीं, उतने उससे कहीं नज़दीक भी नहीं जितनी मालिक ने इंसान को सोचने समझने की ताकत दी है। तो फिर इंसान ने प्रमाणित करना है कि वाकई वो उन पशु जानवरों से बेहतर है, वरना तो जैसी चाल चलता है इंसान प्रमाणित ये करता है कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, वो तो पशुओं से भी नीचे दर्जे वाला है। तो उस लिहाज से देखे तो दोनों तरफ फेल हो गया, एक तो आत्मा का भी कल्याण ना किया इंसानी जन्म को पाकर, और दूसरी तरफ इंसानी रूप में पैदा होकर भी शैतान और हैवान कहला रहा है, दोनों तरफ फेलियर, लोक परलोक दोनों की बाजी हारी। तो ये कौन सी समझदारी है? तो सुमति मिले हर किसी को और पहचान करें इस बात की कि वाकई ही सत्य क्या है, झूठ क्या है, पहचान करें कि कल्याण किस में है और बिगाड़ किसके कारण है, और इस प्रकार से ये सुमति मिले, ये विजडम मिले, ये अवेयरनेस मिले, ये समझ मिले, ताकि वाकई ही ये यश के पात्र बने और इस प्रकार से सुंदर जीवन जिएं, संसार के वातावरण को सुंदर बनाएं और प्यार के नगमे हों, प्यार के तराने हों और चारों तरफ एक मिलवर्तन का भाव हो। मिलजुल कर सभी रहें और इस तरह से इस धरती को सजाएं और संवारें। यही एक शुभकामना, यही अभिलाषा, यही प्रार्थना है। और इसलिए दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्य।